मीरा ने निक और प्रियल के डाइवोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म यूएसए कोर्ट में सबमिट करवा दिया था। वो अपना लैपटॉप बंद ही कर रही थी कि उसके बाबा वहां पर आ गए। चंद्रकांत जी ने पूछा, क्या कर रही हो मीरा बेटा, सब ठीक तो है ना, तुमने अपनी दवाइयां ली? मीरा ने कहा, बाबा हम बिल्कुल ठीक हैं और अब हमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने भी तो कहा था ना आपसे कि अब हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं और हम भी अब सामान्य इंसानों की तरह बाहर घूम फिर सकते हैं। चंद्रकांत जी ने कहा, हाँ मीरा बेटा, हम भी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब तुम सामान्य इंसानों की तरह घूम फिर पाओगी। अपनी बात कहकर उन्होंने सोचा, भले ही डॉक्टर ने ये बोल दिया होगा कि तुम सामान्य इंसानों की तरह घूम सकती हो, लेकिन अभी भी दिल को तसल्ली नहीं है मीरा बेटा। जहां पिछले 10 सालों से तुम्हारा ख्याल रखा है, वहां आगे भी रख सकता हूं। मैं तुम्हें अनाधिकार लोगों से मिलने की या बाहर जाने की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। तुम कब किसके लिए खतरा बन जाओगी, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा बेटा। उन्हें चुप देखकर मीरा ने पूछा, क्या सोच रहे हो बाबा? चंद्रकांत जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी माँ की याद आ रही थी। कितना कुछ बदल गया ना उसके जाने के बाद। तुम सिर्फ 9 साल की थी जब तुम्हारी माँ हम छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने तुम्हें कैसे संभाला, ये मेरा दिल जानता है। बाबा, आप क्यों पुरानी बातों को सोचकर परेशान हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। जब माँ हम छोड़कर गई थी तब मैं बहुत छोटी थी और इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। क्या आपको भी बाकी लोगों की तरह यही लगता है कि मैं पागल हूँ? चंद्रकांत जी ने उसके सिर पर हाथ फेराया और कहा, ऐसा नहीं है बेटा, बस ज़रूरी नहीं कि इस दुनिया में हर इंसान सामान्य हो। कुछ लोग स्पेशल होते हैं और मेरी बेटी उन्हीं स्पेशल लोगों में से एक है। देखना, मैं अपनी स्पेशल सी बेटी के लिए एक स्पेशल सा लड़का ढूंढूंगा। चंद्रकांत जी की बात सुनकर मीरा के गाल शर्म से लाल हो गए। लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है बाबा, और वो दुनिया में सबसे स्पेशल है, मीरा ने सोचा और फिर चंद्रकांत जी से कहा, बाबा मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। मीरा खाना बनाने का बोलकर किचन में चली गई, जबकि चंद्रकांत जी अपने काम में लग गए। मीरा जब 9 साल की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मीरा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। यही वजह थी कि चंद्रकांत जी उसे खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देते थे। वो पूरा दिन घर पर रहकर अपनी नौकरी का काम संभालते और मीरा का पूरा ख्याल रखते। डॉक्टर के मुताबिक मीरा को अनधिकार लोगों से मिलना जुलना मना था। मीरा को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी और अगर ऐसे में कोई भी इंसान उससे थोड़े से भी बुरा से पेश आता तो वो उसके लिए पागलपन की हद तक जा सकती थी। यही वजह थी कि चंद्रकांत जी मीरा को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। निक अपने और प्रियल के डाइवोर्स पेपर की एप्लीकेशन फॉर्म को डस्टबिन में फेंककर कुछ देर बाद घर वापस आ चुका था। रॉन और जीनी वापस यूएसए जा चुके थे। निक नहीं चाहता था कि जीनी अपने बेबी के साथ यहाँ रहे और उन्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, जबकि रॉन भी थोड़ा टाइम जीनी और अपनी बेबी के साथ बिताने के लिए छुट्टी लेकर उनके साथ यूएसए गया था। निक जब वापस घर आया तो सारे हॉल में बैठे थे और आलिया रो रही थी। निक ने आलिया के पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? जैन ने कुछ कहा? जैन ने कहा, भाई मैं क्या कहूँगा, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये क्यों रो रही है। उस दिन हमारी बात होने के बाद मैंने तो एक बार भी इससे गुस्से में बात नहीं की। निक ने कहा, फिर क्या हुआ आलिया? प्रियल ने कुछ कहा? प्रियल ने कहा, मैंने इसे कुछ कहूँगी, इतनी देर से पूछे जा रही हूँ, यह है कि बता ही नहीं रही। आलिया, मुझे तो बता दो क्या हुआ है। आलिया ने सिसकते हुए बताया, भाई मुझे भी मिशन बीच में छोड़कर वापस लखनऊ जाना पड़ेगा। निक ने कहा, ओके आलिया तुम जा सकती हो, लेकिन इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं मिस्टर मुखर्जी से इस बारे में बात कर लूँगा। एमा ने कहा, रॉन के जाने के बाद अब अगर आलिया भी इस मिशन से अलग हो जाएगी तो सिर्फ हम 4 लोग ही रह जाएंगे और हम 4 लोगों में प्रियल का होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। आलिया, अगर तुम इस मिशन के पूरे होने के बाद लखनऊ जाओ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं बात करूं तुम्हारे डैड से? निक बोला। जैन ने कहा, आलिया अगर तुम अपनी प्रॉब्लम बताओगी ही नहीं तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, तुम तो बस कब से रोए जा रही हो, कुछ बताओगी कि हुआ क्या है? अब्बू ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया है, उन्होंने कहा कि वे जैन को और टाइम नहीं दे सकते हैं। भाई आपके कहने पर उन्होंने सिर्फ 2 साल का टाइम दिया था, लेकिन वो 2 साल कब 5 साल में बदल गए पता ही नहीं चला। मेरी छोटी बहन तक की शादी हो चुकी है, उनके हिसाब से रिश्तेदार उन्हें मेरी शादी ना करने के लिए ताने मार रहे हैं। जैन को मुझसे शादी करनी नहीं है तो अब मैं लखनऊ जाकर उस लड़के से शादी कर लूँगी जिससे अब्बू चाहते हैं। उसकी बात सुनकर जैन गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल, तुम्हारे अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? आलिया मैं प्यार करता हूँ तुमसे और तुम किसी और से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? निक ने कहा, अगर तुम्हें आलिया से प्यार है तो तुम कर लो उससे शादी। चलो हम चलकर बात करते हैं मिस्टर सिद्दीकी से। ठीक है आलिया, जिससे शादी करनी है कर लो, लेकिन जब तक भाई और प्रियल के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जैन ने उदास होकर कहा। जैन की बात सुनकर प्रियल और निक ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रियल ने कुछ सोचा और निक के बिल्कुल पास आकर बैठ गई। उसने अपना हाथ निक की कमर में डाला और कहा, लेकिन हमारे बीच तो सब कुछ ठीक हो चुका है। सब एक साथ हैरान होकर बोले, कब? प्रियल ने कहा, कब का? अरे हम तो तुम लोगों को बताने वाले थे, लेकिन बीच में आलिया रोने लगी और सारा सरप्राइज रह गया, है ना जान? निक ने आंखें बड़ी करके कहा। व्हाट? जान? कौन जान? प्रियल ने मुस्कुराकर कहा। अरे आप और कौन? अकेले में तो इस जैन की जान लेने पर तुली रहती है और सबके सामने झूठा प्यार दिखा रही है, बताओ सबको क्या है सच? निक ने प्रियल के पास आकर उसके कान में बोला। प्रियल ने धीरे से कहा, हम करते हैं ना अकेले में बात, तब तक अपना मुंह बंद नहीं रख सकते आप? उन दोनों के फिर से एक होने की बात सुनकर जैन बहुत खुश हो गया। वो निक के पास आया और उसके गले लग गया। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ भाई कि आपके और प्रियल के बीच सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं आलिया से आराम से शादी कर सकता हूँ, वरना मेरे मन में ये गिल्ट रहता कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। आलिया ने कहा, लेकिन जैन अब्बू तुमसे नाराज हैं तो वो इस शादी के लिए कैसे मानेंगे? प्रियल ने कहा, मैं मनाऊंगी अंकल जी को, इनफैक्ट हम सब चलेंगे लखनऊ उनसे बात करने। ठीक है, वैसे भी मैंने मिस्टर मुखर्जी से 3 दिन की छुट्टी की बात की थी, उन्होंने भी हाँ बोल दिया था, तो क्यों ना इन 3 दिनों में हम लखनऊ जाकर जैन और आलिया की शादी करवा दें? निक ने सुझाव दिया। आलिया ने जैन की तरफ देखकर कहा, आर यू श्योर जैन, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? क्योंकि उसके बाद अलग होने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाँ आलिया, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो प्रियल इस तरह चली गई और भाई भी बहुत अपसेट थे, तो मैंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन प्लीज तुम अब्बू को मना लेना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, आलिया ने कहा। हाँ, अगर आलिया और जैन की शादी हुई तो आलिया भी इस मिशन में बनी रहेगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रियल, पहले तुम मेरे साथ अंदर रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निक प्रियल को पकड़कर जबरदस्ती कमरे में ले गया। एमा ने पीछे से चिल्लाकर कहा, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ नहीं कि लग गए दोनों रोमांस करने, थोड़ा तो इंतजार करो। निक ने पीछे मुड़कर कहा, शट अप, और प्रियल के साथ अंदर कमरे में चला गया। निक प्रियल को अंदर रूम में लेकर आया और आते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कब बंद करोगी तो मेरे इमोशंस के साथ खेलना? क्यों लोगों को झूठे दिलासे दे रही हो? एक तरफ जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स पेपर साइन करवा लिया और दूसरी तरफ सबके सामने फिर से एक होने का ड्रामा कर रही हो, चाहती क्या हो आखिर तुम? अंदर आते ही निक मिफर पड़ा। अगर हमारे इस ड्रामे से जैन और आलिया एक होते हैं तो क्या प्रॉब्लम है ड्रामा करने में? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जाकर बता दीजिए सब कुछ, जानते हैं ना उसके बाद क्या होगा? जैन शादी के लिए मना कर देगा और आलिया की शादी किसी और के साथ हो जाएगी। निक ने कहा, हाँ तुम्हारी सबकी पड़ी है, बस मुझे छोड़कर। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तुम जो करना है करो, लेकिन अब मुझसे दूर रहना। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पहले तो बड़ा प्यार आ रहा था अकेले में, प्रियल ने उसके पास आकर कहा। निक ने उसे खींचते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो कि 1 घंटे पहले तुमने जबरदस्ती इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाए थे, उसके बाद प्यार नहीं गुस्सा ही आएगा। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, मैं कोशिश करूंगी कि जैन और आलिया के रिश्ते सुधरने के बाद हमारे रिश्ते को भी सेकेंड चांस देने के बारे में सोचूं। ओ रियली? हमेशा तुम ही डिसाइड करोगी कि कब एक होना है और कब डाइवोर्स लेना है? अब मेरा मूड नहीं है एक होने का, मुझे दूसरी चाहिए। फिलहाल के लिए जैन और आलिया की शादी तक ड्रामा करते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे, कहकर निक वहां से जाने लगा। प्रियल दौड़कर उसके पीछे गई और उसके सामने आ गई। उसने आंखें बड़ी करके बोला, क्या कहा आपने? दूसरी ढूंढ लेंगे? ढूंढ के देखो, जान ले लूंगी मैं आपकी और उसकी भी। निक ने कहा, जस्ट वेट एंड सी मिस शर्मा। निक फिर से वहां से जाने लगा कि प्रियल उसके पीछे गई और पकड़कर निक के होठों पर किस करने लगी। तो प्लान सक्सेसफुल हो ही गया, मुझे पता था कि तुम पर रिवर्स साइकोलॉजी काम करेगी, मैं जितना दूर जाऊंगा तुम मेरे उतना ही पास आओगी। अब देखते हैं कि तुम मुझे मनाने के लिए क्या क्या करती हो मिस शर्मा। सोचते हुए उसने प्रियल को दूर किया और कहा, छोड़ो मुझे बेवकूफ लड़की, जाओ तुम जाकर अपने मिशन पर काम करो और ये खत्म हो जाए तो दूसरा पकड़ लेना। निक रूम से बाहर चला गया, जबकि प्रियल उसकी बातों से परेशान होकर वहां पर बैठ गई। प्रियल ने कहा, ऐसे लग रहा है कि टाइम मुझे खींचकर 6.5 साल पीछे ले गया हो, जहां ये बंदा मुझे भाव भी नहीं देता था और मैं इसे पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती थी, ये तो सेम उसी एटीट्यूड में आ गए हैं। कुछ सोच प्रियल, कुछ सोच, कैसे निक को वापस अपने करीब लाना है। बहुत हो गया, अब मुझे नहीं रहना है इसके बिना। अरे भाड़ में जाए यार सब, मुझे मेरा निक चाहिए तो चाहिए, मैंने इसे वापस नहीं पटाया तो मेरा नाम भी प्रियल शर्मा नहीं। मैं भी देखती हूँ कब तक एटीट्यूड दिखाता है, आना तो मेरे पास ही पड़ेगा वापस, अब तो मेरा मिशन इसे पटाना ही है। निक का इग्नोर करना प्रियल को परेशान कर गया। वो उसे फिर से करीब लाने के तरीके सोचने लगी।